मयि सर्वाणि कर्माणि
सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः।
अतः हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तत्पर्य यह श्लोक भगवद्गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म पालन के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होना आवश्यक है। ऐसे आदेश से कुछ कठिनाई उपस्थित हो सकती है, फिर भी कृष्ण के आश्रित होकर स्वधर्म का पालन करना ही चाहिए, क्योंकि यह जीव की स्वाभाविक स्थिति है। जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। अतः श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने का इस तरह आदेश दिया मानो भगवान उसके सेनानायक हो। परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सर्वस्व की बलि करनी होती है और साथ ही स्वामित्व जताए बिना स्वधर्म का पालन करना होता है। अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है, अतः जो पूर्णतया परमेश्वर का आश्रित रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, वह अध्यात्म चेतस कहलाते हैं। निराशी ही का अर्थ है स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, किंतु फल की आशा न करना। कोषाध्यक्ष अपने स्वामी के लिए लाखों रुपये गिन सकता है, किंतु इसमें से वह अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मनुष्य को यह समझना चाहिए कि इस संसार में किसी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं परमेश्वर की है। मई अर्थात मुझ में का वास्तविक तात्पर्य यही है, और जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है तो वह किसी वस्तु पर अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता। या भावनामृत निर्मम अर्थात मेरा कुछ नहीं है कहलाते हैं। यदि ऐसे कठोर आदेश को जो शारीरिक संबंध में तथाकथित बंधुत्व भावना से रहित है पूरा करने में कुछ झिझक हो तो उससे दूर कर देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य विगत ज्वर अर्थात ज्वर या आलस्य से रहित हो सकता है। अपने गुण तथा स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को विशेष प्रकार का कार्य करना होता है, और ऐसे कर्तव्यों का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशय निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वर। अच्छा हे अर्जुन, आपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण का आदेश अर्जुन को यही है, युद्ध करो। और युद्ध करने में आलस्य नहीं चलेगा। तो अभी युद्ध का शुरू हो गया, शंख बजाना हो गया और अर्जुन बोलते बहुत थक गए हो, थोड़ा आराम करूंगा। तो ऐसा नहीं चलेगा। और ठीक है, ये सब दूसरे फौज वाले हमको आक्रमण करते हैं तो ठीक है, बाद में उसके बारे में चिंतन करेगा। अभी मुझे थोड़ा आराम करना है। तो ऐसा नहीं चलेगा। युद्ध में आलस्य का मतलब मृत्यु। युद्ध बिना पूर्ण उत्साह तो नहीं चलेगा। पूर्ण ध्यान, पूर्ण ध्यान देना चाहिए, पूर्ण चेतना देना चाहिए। लाइफ एंड डेथ मैटर, लाइफ एंड डेथ। यदि किसी भी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण, हम ऐसे बोलते हिंदी में भी, जीवन मृत्यु, जीवन या मरण की बात है, ऐसे बोलते हिंदी में, ऐसे बोलते जीने या मरने का प्रश्न, क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो इस भगवद गीता उपदेश हमको देने से, अर्जुन को देने से, भगवान कृष्ण समस्त बद्ध जीवों को लक्ष्य करते हैं। तो माया का प्रभाव से प्रभावित होने से हम नहीं समझते हैं कि सब कुछ जो हम करते हैं वो जीने या मरने का प्रश्न। एक्चुअली इसमें कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि मरण होगा कि नहीं वो तो प्रश्न नहीं है, होगा। लेकिन मरण के पश्चात क्या होगा, जो हम करते हैं इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके उसके अनुसार हमारा अगला जन्म होगा, तो इसी बात नहीं समझना प्रत्येक मनुष्य की सभी समस्याओं का मूल कारण है। इसलिए लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थदम नित्यमपि हधीर तूर्णम्यते तनपते अनुमृत्यव निश्चयसाय विषय खलु सर्वथा स्यात्। इस श्लोक का क्या अर्थ है, तो दो मतलब, अभी तो सात दिन भगवद गीता क्लास रहते हैं, उसमें तो कम से कम दो तीन बार बोला इस श्लोक का क्या अर्थ है। labdva sudurlabham idam bahusambhavante. Is kya arte? Labdva, lab kya hai? Sudurlabham, jo ati durlabh hai. Idam, atra, yahapa, isi sthiti mein. Bahusambhavante, bahut jamon ke paschat hum isi bahuti durlab vastu milte wo kya hai manusham. Manusha ka matlab manav ka janma. Jo artadam, jo humko art paramat de sakte. Parantu anityam. Hamare paas dirgh samay nahi hai. Kamala dala jala jivan na thala mala. Kamal ka patra stit ek boon ka pani kitne samay patra par rahega to gil jaye. To jivan aise hai, zindagi aise hai. Zindagi aise hai matlab aise chalega. Ke kuch saal ke pehle jab England gaya tha, to no actually Ireland, to mere ek mama ko phone ki, jo mere sab aatmiya mein wo sabse anukool the mere Krishna bhakti mein pravesh karne ki baad mein, to aisa phone kiya, o mama se baat karna hai, o marga. Unki patni, meri mami ba. O marga. Mujhe jankari nahi tha. To aisa hai, kamala jala jala jivan atala. Srila Prabhupada, Vrindavane bhajan. Unka ek lek, ek kavitva, isme Srila Prabhupada soch ke bale ki mere pita, mata, mama, mami, kaka, kaki, nana, nani, sab chalega. To jaise kuch pata, shaka, or vriksh se gil jate hai, or nadi mein, wo sab ek saath ekatrit hote hai, phir nadi ka pravaha ka prabhav se, phir sab, phir kya bolte, scattered, kya bolte, scattered, alag alag. So ye hamari sthiti hai. Mere sab atmiya, kutum, jinke sath hamara ganisht sambandh hote hai, to kshanek hai. To sab kuch is bhautik sthiti mein kshanek hai. To phir bhi manushya janma ka vishesh suvidha hai ki is manav janma prapt karke hum sansar ki samasya, sansar hi samasya hai, sabhi samasyon ka samadhan mil sakte hai, aur us liye prayas karna chahiye. Kab shuru karenge? To kuch kaam baki hai, to meri beti ko शादी में शादी का उसलिए शादी का बंदोबस्त करना है और उसके बाद और कुछ फिर वो गर्भवती है नाती को देखभाल करना तो ऐसे संसारिक बंधन उसका अंत कभी नहीं होता। हम सोचते हैं कि ठीक है तो वो सभी बेटे बेटियां सबको सेटल करूंगा फिर उसके बाद और ज्यादा माया आता है नाती और नातिनी के रूप में। आपको मालूम है ना आपका कोई नाती नातिनी है सब छोड़ दिया तो और नाती नातिनी के लिए आसक्ति खुद के बेटा बेटी अंग से ज्यादा होते तो इसलिए ये शब्द है संन्यास। संन्यास संपूर्ण त्याग किस लिए जिससे हम वास्तव आसक्ति जो हमारा वास्तव कल्याण है एक दूसरा परिवार के लिए हो सकते। वो परिवार कौन सा परिवार है? नंद बाबा का परिवार। कृष्ण संसार करो चारे अनाचार कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धर्मशा तो संसार त्याग हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है संसार में प्रवेश करना। कौन सा संसार? कृष्ण कृष्ण का संसार। वो आध्यात्मिक संसार है। हम निर्विशेषवादी नहीं है। जो बोलते हैं तो सब कुछ माया है कृष्ण भी माया है ये मायावादी निर्विशेषवादी का दूषित विचार है। वे देखते हैं कि इस भौतिक बंधन मायिक है वो सही है वो संबंध जो है धन जौवन पुत्र परिजन धन यौवन पुत्र पिता माता भाई बहनों ये सबों के लिए आसक्ति जो है ये सभी माया है। परंतु भ्रांत धारणा से मायावादी विचार है कि कृष्ण प्रेम जो है कृष्ण वो संबंध प्रेम संबंध जो कृष्ण नंद बाबा यशोदा माई व्रज गोप गोपियां गायांग में वो संबंध वो भी मायक है यही भूल धारणा है। तो एक उदाहरण है कि एक गाय तो एक बार यदि गौशाला में आग जलते हैं तो फिर दूसरी बार जब भी वो गाय कुछ भी लाल चीज को देखते हैं तो बहुत डरते हैं तो सब जो लाल सब चीज जो लाल है तो आग नहीं है लेकिन इतने सर डर लगी आग से कि जब भी किसी भी लाल चीज को देखते हैं तो सोचते हैं तो ये भी आग है। तो उस प्रकार ये विचार सही है कि भौतिक संबंधों भाई बहनों पिता पत्नी ये सबों के लिए ये मायक है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि वो सभी संबंध सब मायक है। कृष्ण का संबंध उनके प्रेमी भक्तों के साथ वो संबंध, उसको स्मरण करने से हम मायिक संबंध का दूषित प्रभाव से मुक्त होते हैं। निर्विशेष बात है कि सब कुछ माया है। अगर किसी वस्तु का नाम गुण रूप कार्यकलापों वर्ण गंध अगर किसी भी लक्षण है जो हम इंद्रियों अथवा मन के द्वारा अनुभव कर सकते हैं अथवा चिंतन कर सकते हैं तो वो माया है। तो ये निर्विशेषवाद वो ही माया है। कृष्ण ही परम सत्य है और कृष्ण भक्ति प्राप्त करना मानव जीवन का सत्य प्रयोजन है। तो इसलिए सबके लिए प्रयोजनीय है युद्ध हस्व विगत ज्वरा, युद्ध जो सबके लिए युद्ध करना की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन क्षत्रिय थे और इस प्रसंग में अर्जुन का कर्तव्य था लड़ाई करना। किसलिए? भगवान श्री कृष्ण को प्रीत करने के लिए। तो हम सब युद्ध में हैं। युद्ध क्या है? माया हमको आक्रमण करते हैं तो हमारा हाल इतना भयानक है कि हम पूरा माया से वशीभूत है, परंतु कि हम माया के तीन गुणों और राशि जैसे बाधित है। इसके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। माया हमको इतना दृढ़ से बंधन किए कि हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जो भी करना चाहता हूं करता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मेरी कोई समस्या नहीं है, ईश्वर हम अहम भोगी सिद्ध हो हम बलवान सुखी। तो हम इस प्रकार सोचते हैं, परंतु वास्तव स्थिति हम नहीं देखते। श्रीमद् भागवत में विशेषकर पंचम स्कंद में भौतिक विलास का जंगल उसका वर्णन है। तो कैसे सामान्य व्यक्तियों का जीवन जो ऐसे सामान्य नॉर्मल दिख रहा है तो वास्तव में बहुत ही भयानक हुआ है। हम सब मृत्युमुखी है। एक कहा बात है ये रोमन युग से 2000 के साल के पहले यूरोप में उस समय रोमन साम्राज्य था, राजधानी रोम था। तो उस सभ्यता में प्रथा थी कि वो एक व्यक्ति का मरण के पश्चात तो सब एक्चुअली तो सभी सभ्यता में ऐसे है कि उसका शव के साथ उसके शव लेके और सब आत्मीय बंधु इत्यादि साथ में चला गया शमशान या कब्रस्तान तक। तो रोमन सभ्यता में उस समय घंट बजाना था जिससे सब सूचित होंगे कि एक व्यक्ति मार गया है। तो यही कहा बात है कि और घर के अंदर से एक व्यक्ति सुनते हैं कि घंट की ध्वनि आते हैं और पूछते हैं तो कौन के लिए घंटी बज रहे हैं और उत्तर है पूछो मत तुम के लिए, तुम भी एक ही हाल में हो, सब मृत्युमुखी है, तो आज दूसरे के लिए घंटी बजाते हैं और कल तुमको शमशान पर ले जाना होगा। तो हम सब एक ही स्थिति में है। अगर हम किसी के बारे में बोलते वो मृत्युमुखी है और ज्यादा दिन और ऐसे डॉक्टर बोल सकते कुछ लक्षण है कि ये व्यक्ति तो 2-3 दिन में मर जाएगा, ऐसा है नहीं तो बात ऐसे बोलते है जिसमें कोई तर्क नहीं है और उसका वचन का स्वर अलग होते हैं। तो ऐसा कुछ लक्षण है जिससे अभिज्ञ लोग समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा। प्रभुपाद बोले, प्रभुपाद तो गृहस्थ जीवन में फार्मासिस्ट थे, तो श्रील प्रभुपाद का बहुत अभिज्ञता था इस जीवन मरण की बात में कि एक डॉक्टर ढाका पूर्व बंगला में वो प्रभुपाद को बोले कि आज सुबह एक कृषक का काफ की ध्वनि सुने से समझ गया कि वो आज ही मर जाएगा, उसकी स्वास्थ्य नॉर्मल जैसे है देखते हैं लेकिन उसका कफ की ध्वनि से समझते हूं कि वो मर जाएगा आज। ऐसा होता है नहीं अचानक, कुछ सालों के पहले हरिदासपुर पश्चिम बंगला में इस्कॉन का केंद्र है तो वहां पर एक भक्त ऐसे कॉन्ग्रीगेशनल भक्त तो वायस 40 ऐसे था और स्वस्थ अच्छी था, विवाहित 3-4 संतान ऐसे थे। तो सुबह का समय बाबा की पेट में दर्द है बहुत, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर बोले तो हॉस्पिटल जाओ टेस्ट करने के लिए, तो हॉस्पिटल तक तो नहीं पहुंचे, बीच में मार गए अचानक। तो तो हम ये सभी बात क्यों बोलते हैं? हम क्या निराशावादी है? नहीं, हम आशावादी है। हमारी आशा है, केवल आशा नहीं है, हम गुरु साधु शास्त्र का वचन में पूरी निष्ठा है। हम आश्वस्त है कि इस जीवन युद्ध में यदि हम सचेतन है, यदि हम विघट ज्वरा बिना आलस्य से कृष्ण की प्रीति से सभी प्रयास करेंगे, भौतिक इंद्रिय सुख की इच्छा त्याग करके यदि हम अर्जुन जैसे पूरा प्राण से कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ करेंगे, तो अर्जुन जैसे हम एक ही फल मिलेंगे। तो अर्जुन भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त थे, श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे। तो ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि प्रभुपाद तो शुद्ध भक्त थे तो उनके लिए संभव है मेरे लिए नहीं। ऐसा हम कभी कभी ऐसे सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद संपूर्ण शुद्ध थे, मेरे लिए ऐसा शुद्ध होना संभव नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद अवश्य ही भगवान का शुद्ध भक्त है। तो प्रभुपाद हमारे बीच में आए थे किस लिए? हमको शिक्षा देने के लिए। वो शिक्षा क्या है? तो कैसे हम भी पूर्ण शुद्ध हो सकते? यदि हमारे ये असंभव है तो प्रभुपाद का आगमन का क्या आवश्यकता था? और यदि हम शुद्ध नहीं हो सकते तो सभी शास्त्र भगवद गीता सभी आचार्यों तो गलत प्रचार किए हैं। यदि हम बोलते मैं शुद्ध नहीं हो सकता तो ऐसा बोलना वास्तव में गुरु साधु शास्त्र की निंदा कर, क्योंकि सब गुरु साधु शास्त्र आमनाय वाणी का सिद्धांत है कि जीव की मूल स्थिति स्वभाव धर्म वो ही शुद्ध है। तो हम अभी माया का हाथ में है, परंतु भगवान कृष्ण की वाणी में विश्वास रखना चाहिए। दैवी ही ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्यया ममेव ये प्रपद्यन्ते माया में थम चरन्ते। कि यदि हम हमारी वर्तमान दशा मायाग्रस्त है, माया की राशि तीन गुणभूत राशि सत्वगुण रजगुण तमगुण, उससे हमारा मजबूत बंधन है, अपने प्रयास से उससे मुक्त होना संभव नहीं है। परंतु यदि हम आत्मसमर्पण करेंगे भगवान श्री कृष्ण के श्री चरण पर, तो उनकी कृपा से हम वो दुर्जय माया बंधन से, उनकी कृपा से आसानी से मुक्त हो सके। तो वो आत्मसमर्पण क्या है? तो आत्मसमर्पण होते हैं बाली महाराज जैसे। बाली महाराज का परम सौभाग्य था कि वामन देव स्वयं उनका यज्ञशाला में आए थे और लाली महाराज ने चुना किया सब कुछ वामन देव को अर्पण करना। तो हम भी चुना सकते कि हम सब कुछ कृष्ण को अर्पण करेंगे अथवा हम माया का किंकर रहेंगे। तो ऐसा है, बाली महाराज एक बार सब कुछ वामन देव को अर्पण करके परम सिद्धि मिली, वो एक ही अर्पण करने से। हमारी स्थिति अलग है क्योंकि हम प्रयास करते हैं, हम संकल्प करते हैं सब कुछ भगवान को अर्पण करना, मन तन धन। तो हम उसी दिशा जाते हैं आत्मसमर्पण के ओर, फिर माया पीछे से हमको बुलाती है। तो इतने तुरंत मत जाओ, नहीं इतना जन्मों से तुम्हारी बंधवी थी तो मुझको छोड़ देते हो क्यों, छोड़ देते हो क्यों? तो फिर हम माया की बात सुन के सोचते तो सही बात है। तो अच्छा है कृष्ण सेवा करना, लेकिन माया वो भी अच्छी है, इतना खराब नहीं, इतना फनाटिकल नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, हम कुछ कृष्ण सेवा करेंगे और कुछ माया सेवा भी करेंगे। तो हम प्रभुपाद जैसे शुद्ध नहीं हो सकते, और इस प्रकार मिश्र भक्ति अथवा अपराध युक्त भक्ति पोषण करके हम, अर्थात हम कुछ प्रयास करते भक्ति में और भौतिक इच्छाएं वो सभी भी पोषण करते मन में। तो इस प्रकार की भक्ति से वंचित फल प्रेम धन बहुत जन्मों में भी प्राप्त नहीं होते। बहु जन्म करे जदि श्रवण कीर्तन तब उतर ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि हम अपराध युक्त नाम अभ्यास करते हैं तो नाम का वास्तव फल पूर्ण फल प्रेम फल तो बहुत जन्मों में भी नहीं मिलते। तो यही साधक का जीवन है, थोड़ा अग्रसर होना फिर थोड़ा पीछे आ जाओ। हम कृष्ण के ओर जाते हैं फिर उप थोड़ा पीछे वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार लड़ाई नहीं होते। यदि हम युद्ध में आक्रमण करते, शंख बजाते हैं, चिल्लाते हैं, दूसरा फौज को आक्रमण करते हैं, फिर वो दस कदम सामने जाके सोचते कि एक्चुअली मुझे युद्ध इतने सा अच्छा नहीं लगते, ठीक है हम वापस पीछे जाएंगे। और क्रिकेट मैच हो रहा है टीवी पर, हम वापस जाके इंडिया पाकिस्तान मैच देखेंगे, बाद में हम युद्ध करेंगे तो नहीं चलेंगे। तो ये युद्ध, ये उदाहरण सबके लिए उपयुक्त है, कैसे युद्ध करना है, सब कुछ समर्पण कर। हम प्रयास करते फिर पीछे आ जाते, नहीं पूरा विश्वास के साथ सामने जाना चाहिए। कृष्ण हमको सहायता करेंगे। तो यही विश्वास होना चाहिए। हाफ हार्टेडली अर्ध प्रयास से पूर्ण फल नहीं मिलेगा, अर्ध प्रयास से कुछ भी नहीं होता। तो पूर्ण प्राण के साथ भक्ति करना चाहिए। यद्यस्व विगत ज्वरः आलस्य से रहित युद्ध करो, उत्साह के सहित भक्ति करो। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है क्या? उत्साह के साथ, उत्साह और ज्ञान भी होना चाहिए। यदि हम केवल उत्साही है लेकिन हम नहीं जानते कैसे लड़ाई करना है, तो तलवार हम पकड़ते हैं वो क्या बोलते हैं, हैंडल नहीं पकड़ते, ब्लेड उसको पकड़ते हैं, तो हम कैसे लड़ाई करेंगे? तो उस कैसे लड़ाई करना, तो उसके लिए प्रशिक्षण लेना चाहिए ने? यदि ट्रेनिंग नहीं हो तो हम कैसे लड़ाई करेंगे? ज्ञान उसका मतलब वो कैसे किस लिए भक्ति करना समझना चाहिए, फिर कैसे करना, तो यही करना चाहिए। श्रवण करना चाहिए, कैसे श्रवण करना है, कैसे कीर्तन करना है, कैसे अर्चन करना है, कैसे वैष्णव व्यवहार करना है, तो ये सब सीखना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद्गीता यथारूप की जय।